إلى قيام يوم لقاء الله. قال مولانا ومقتدانا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن دره، وحانت عليه نفسه من أمر عليه لسانه. آج 19 کی رات ہے اور دو اہم مناسبتیں ایک ساتھ ہیں جو ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتی ہیں. در حقیقت ایک طرف جہاں شب ضربت مولا الموحدین امیر المومنین علیہ السلام ہے تو دوسری طرف جو ہے شب قدر بھی ہے. ہمارے لیے جہاں ایک طرف سوگ اور غم اور تکلیف اور اندوہ کا احساس ہے، اسی کے اندر سے عبودیت، مغفرت اور بندگی کا احساس بھی جاگتا ہے. کیونکہ مولا کائنات جیسے کہ من المسجد الى المسجد ہیں، آغاز زمین میں مولا کی حیات طیب و طاہر کا آغاز بھی خانہ خدا سے اور زمین سے ملکوت کی طرف واپسی بھی خانہ خدا سے. تو مولا کا ہی فرمان ہے نہج البلاغہ میں، جتنے وقت ہیں انشاءاللہ یہ کل مزید ڈیٹیل میں ہم جائیں گے، آج بس صرف ترجمہ اور دو چار عرائض آپ کی خدمت میں ہوں گے، کہ جس نے لالچ کو اپنی عادت بنائی اس نے اپنی شخصیت کو بے عزت کر دیا، رسوا کر دیا، اور جس نے ہر شخص کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات پر، وہ یہ بات ایکسپٹ کر چکا ہے کہ اسے ذلیل ہونا ہے، کیونکہ ہر کسی کے سامنے اپنی مجبوریاں اور اپنی پرابلمز کو بتا رہا ہے. پھر فرماتے ہیں جس نے خود پر اپنی زبان کو حاکم بنایا، اور مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی شخصیت کو بہت ہی ہلکے لے لیا ہے، یعنی اپنی شخصیت کو کے لیے وہ کسی قیمت کا جو ہے قائل نہیں ہے. یہ نصیحتیں ہیں، نصیحت آموز جملہ ہے در حقیقت، ایک نصیحت آموز مولا کا تقریباً قدر خطبہ ہے. اس خطبے سے سلیکٹ کیا جناب سید رضی نے اور اس کو ایک سبق آموز قول اور اقوال یا فرمان کے طور پر بیان کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وعظ و نصیحت اور علم اخلاق و عرفانیات میں یہ جو ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ فرق ہے کہ وعظ و نصیحت میں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ آرگیومنٹ، دلیل، منطق اور ان چیزوں کو فالو کریں. موعظہ اور وعظ و نصیحت سبق آموز گفتگو ہوتی ہے، سبق آموز باتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ علماء کرام بھی اپنے سے کئی درجہ کم علم اور حتیٰ کم عمل بھی افراد کو ممبر پہ بٹھاتے تھے اور ان سے موعظہ سنتے تھے. وہ سب سے بڑی مثال امام خمینی کی ہے کہ امام خمینی ایک ذاکر قسم کے باکردار شخص تھے، بہت اچھے مصائب پڑھتے تھے، بہت اچھی واعظ و نصیحت کرتے، ان کو ممبر پہ بٹھاتے تھے، خود ان کے ممبر کے نیچے بیٹھ کے ان سے موعظہ سنتے تھے. اخلاقی باتیں، سمپل باتیں، غیبت کرنے کے یہ نقصانات ہیں، حدیث میں یہ آیا ہے، ایسا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے کے یہ مسائل ہیں، زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، لالچ بہت بری بلا ہے، لالچ کی وجہ سے سمپل باتیں ہوتی تھی. تو نصیحت ہمیشہ ضروری ہے انسان کے لیے، اور نصیحت کے اندر اسی لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ دلیل و منطق کے ساتھ بات کی جائے. علم اخلاق میں ہم دلیل و منطق کے ساتھ بات کرتے ہیں، کسی حد تک آداب میں بھی ڈسکس ہوتا ہے، عرفان میں بھی. موعظہ دوسرے شخص کو اصل میں اس کے اندر موجود جو اچھائی کا احساس ہے اسے جگانا ہے، اسے بیدار رکھنا ہے، اسے مضبوط کرنا ہے، اور برائی کے خطرات سے اس کو الرٹ کرنا ہے. موعظہ وعظ و نصیحت جو ہے اس طرح کا عمل ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ انسانوں کا یہ ہے، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے کسی اور جگہ میں، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ 10 منٹ کے اندر میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو نہیں جانتے ہیں اس لیے غلطی کرتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے غلط راستے میں جانا या किसी के सही रास्ते की रुकावट बनना नहीं है, बल्कि हमारा क्या है, जितना हम जानते हैं उस पर अमल न करने की वजह से हम खुद गलत रास्ते पर जाते हैं, दूसरों के सही रास्ते की भी रुकावट बन जाते हैं। इंसान के लिए, एक मोमिन के लिए और खासकर एक अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले और फॉलोअर के लिए अहम तरीन चीज ये है कि वो खुद गलत रास्ते पर ना जाए, एक दूसरे के सही रास्ते की रुकावट भी ना बने। उसूली तौर पर तो ये है कि खुद भी गलत रास्ते पे ना जाए और दूसरों को भी सही रास्ते पे लाने की कोशिश करे, लेकिन ये मैक्सिमम थिंक है, बावजूद इसके कि ये फरीजा है अमर बिल मारूफ के अनवान से। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए आगाज यहां से करना होगा कि हम गलत रास्ते पे ना जाएं, दूसरों के सही रास्ते की रुकावट ना बने। हमारा सबसे बड़ा मसला हमारी कम इल्मी नहीं है, कम अमली है। जितनी जल्दी हम इसको पालेंगे, समझेंगे और इस नुक्ते को दरियाफ्त करेंगे, उतनी जल्दी सिराते मुस्तकीम पर और सीधे रास्ते पर हम बेहतर चल पाएंगे। जितना हम उलझते रहेंगे इस मसले में कि जो जानते हैं उस पर हमने अमल नहीं करना बल्कि और जानने के पीछे दौड़ लगानी है, तो उतना हम मुमकिन है, इंफॉर्मेशन एज ए नॉलेज तो हमारे पास बहुत कुछ आएगा, मालूमात बहुत अच्छी मिलेंगी, लेकिन मसला वही खड़ा रहेगा, यही रहा कि हम खुद सही रास्ते पे नहीं है, दूसरे के अच्छे रास्तों की रुकावट बने हुए हैं। और जितना हम जानते हैं उस पर अमल करेंगे, अहादीस में भी यही बयान करते हैं कि जितना जानते हो उस पर अमल करो। फरमाते हैं इल्म का कमाल क्या है, मौला फरमाते हैं इल्म का कमाल ये है कि आदमी जो अच्छा जानता है उस पर अमल करे। फिर फरमाया कि ये इल्म अमल के साथ एक तरह की हमाहंगी और एक तरह की एक रंग में है ये इल्म और अमल। जहां इल्म अमल के सांचे में नहीं डलेगा वो इल्म भाग खड़ा हो जाएगा, मालूमात होंगी इल्म नहीं रहेगा, क्योंकि इल्म नूर है। अल इल्म नूरुन यक्तिबुल्लाहु फी क़ल्बि मन यशा, फरमाया इल्म नूर है, खुदा जिसके दिल में चाहता है इस नूर को रोशन करता है। तो इल्म बे माने मालूमात नहीं, इल्म बे माने नूर, अमल के साथ हो तो फिर नूर है। खाली मालूमात नूर नहीं है, खाली मालूमात दुनियावी मसाइल के हल करने में मुफीद हो सकती है। बहरहाल फरमाया लालच एक बुरी चीज है, लालच में पड़ने वाला इंसान जो है वो अपनी शख्सियत खो बैठता है, और इसी तरह अपनी मुश्किलात और प्रॉब्लम्स को हर किसी के सामने बयान करने वाला, अहल है ना अहल है, बंदा आपकी शख्सियत को क्या समझेगा क्या, क्योंकि दूसरी तरफ कुरान ने कहा है, मौला फरमाते हैं मोमिनीन एक दूसरे के साथ ताउन करें, ताउन वाल बिर व तकवा है ना, ताउन किस मसले में होता है, एक दूसरे की प्रॉब्लम सोल्व करें। ये असल नमाज जमात, ये इज्तिमात, ये मजालिस, इसकी एक फिलोसफी मलकूतियत के साथ एक जो हमारी फिलोसफी है वो यही है कि हमारे हमारे दरमियान राबिता रहे, बरकरार रहे। मासूम से सवाल किया कि जमात नमाज जमात के इतने ज्यादा इतना ज्यादा सवाब क्यों है, एक रकात का 70 रकात, 70 रकातें कोई इजीली मिल जाती है आदमी को। तो मासूम ने एक वजह जो बयान की, यही वजह बयान की, क्योंकि कहा मोमिनून के दरमियान एक रब्त ताल्लुक तराबुत, तराबुत का लफ्ज़ इस्तेमाल है, एक ताल्लुक पैदा हो जाता है, एक दूसरे के हाल अहवाल पूछते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। तो बस बुनियादी जो प्रिंसिपल है वो तो ये है कि मोमिनीन ने एक दूसरे को ताउन करना, एक दूसरे के मसाइल के हल करने में मददगार आमिल बनना है। लेकिन इन द सेम टाइम मौला फरमाते हैं देखें मोमिनीन अपनी मुश्किलात को हर किसी के सामने बयान न करें, लायक बंदे के सामने बयान करें, ईमानदार के सामने बयान करें, जो राजदारी कर सकता हो, जो आपके लिए हमदर्दी का जज्बा रखता हो, आपकी मुश्किलात को आपका मजाक न बनाए, आपकी मुश्किलात का सुनने के बाद उसकी निगाहों में आपकी शख्सियत छोटी ना हो जाए बल्कि इज्जत बढ़ाए वो आपकी, और ताउन करे तो इज्जत नफ्स को बरकरार रख कर ताउन करे। हर किसी के सामने जाकर दुखड़े नहीं सुनाना चाहिए। अब इसी को लेके थोड़ा बड़ा स्केच पे आते हैं, 5 मिनट रह गए हैं और मुझे आज की शब के हवाले से 2 अर्ज भी करने, थोड़े से बड़े स्केच पे आते हैं। एक मुल्क, एक कौम हर किसी के सामने अपनी मुश्किलात बयान करती रहे तो क्या उसकी इज्जत वकार बाकी रहती है? नहीं रहती है। हर किसी के पास जाए, हमारे पास तो हमारी इकोनॉमी खराब है, हमारे पास हमारी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। अगर आप फंड नहीं करते हैं तो हम तो भूखे मरने वाले हैं, अगर आप फंड नहीं करते हैं तो हमारी कौम तो मर जाएगी, अगर आप ये नहीं कि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है, हमारे पास ये एक कौम करे, एक मुल्क करे, हर नाअहल के सामने, हर बेलायक को जो आपके इस पॉइंट को पकड़ के आपकी शख्सियत को, आपकी मुल्क की शख्सियत को, आपके कौम की शख्सियत को तहो बर्बाद कर दे, तो क्या देखें मौला की तालीमात इंफरादी नहीं है, इंफरादी भी है इज्तिमाई भी है। अगर ये कौम करे, एक मजहब करे, एक मसलक करे, एक मसलक के लोग, एक मजहब के लोग कहें ओ बड़ी दुनिया की ताकतों, शैतानी ताकतों, आओ हमारी मदद करो, क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं लिहाजा हमें मारा जा रहा है, हम पर जुल्म हो रहा है, हमें तबाह बर्बाद किया जा रहा है, ये कोई शरफ है? और मदद मांगे शयातीन से जो खुद जालिमीन में से हैं, तो ये उसके इज्जत वकार में इजाफा होगा। ताआवुनु अलल बिर्रि व तक्वा, शर्त लगाएं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, हेल्प करना है, मदद मांगनी है, मदद देनी है। कोई मदद मांगे मोमिन तो कहा उस मोमिन की दर्द को ऐसा समझो जैसे तुम्हारा जिस्म में ही दर्द हो रहा है ना, ये मतलुल मोमिन फी तवादुदिहिम व तवाजुदिहिम का मतलुल जसद फरमाया, एक जिस्म का जैसे एक पार्ट है ना उसको तकलीफ हो रही है, मोमिन भाई को देखे तो मदद करे, लेकिन उसकी इज्जत और क्या कहते हैं उसकी इज्जत को मजरूह किए बगैर, इज्जत नफ्स को पामाल किए बगैर, इस मोमिन भाई से भी कहा, इस मसलक से, इस मुल्क से भी कहा ताउन करो, दुनिया में ताउन के बगैर नहीं चलता, कॉपरेशन जरूरी, लेकिन इज्जत के साथ, वकार के साथ, अपनी इज्जत और वकार को खोकर ताउन नहीं मांगना, मदद नहीं मांगनी। हमारे अइमा अलैहिस्सलाम के ऊपर इतना जुल्म हुआ, इतना स्तम हुआ, आप कहें मामूली सा नजर नहीं आएगा कि नऊज़ु बिल्लाह, वो तो छोड़े अपनी तो मैं मिसाल ही नहीं दूंगा, अपने मानने वालों की इज्जत पर भी मामूली सी हर्फ आने दिया हो, जेलों में रहे हैं 25 साल, मौलाए कायनात को कोशिश की सरकार ने आइसोलेट करें मौला को, लेकिन कभी एक ऐसा लम्हा आया हो मौला ने अपने मानने वालों की खातिर मामूली सी भी जो है कोई ऐसी चीज बर्दाश्त की हो जिसको हम खुददारी के खिलाफ कहें, इज्जत नफ्स की पामाली कहें, जिसको हम नहीं किया है। करबला में आप देखें जहां आप सुनते हैं एक दफा फरमाते हैं अलमौत औला मिन रुकूबिल आर, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है, फिर फरमाते वाल आर औला मिन दुखूलिन नार, तो ये दर्स हमें दी गई है, तो मजीद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 19 की रात है, शब ज़रबत मौला है, शब कदर भी, इंशाल्लाह आमाल हैं, रात 12 बजे तक आमाल खत्म हो जाएंगे क्योंकि वर्किंग डे है इसलिए, लेकिन तेजी के साथ हम आज की शब के मखसूस आमाल करेंगे। जंग खंदक में मौला के सर अकदस पर मामूली सी ज़र्ब लगी थी और खून बहना शुरू हो गया, तो अल्लाह के रसूल खुद तड़प के आगे बढ़े और मौला के सर पर पट्टी बांधने लग गए, और पट्टी बांध रहे थे उसी दौरान कुछ जुमले इरशाद फरमाया, फरमाया ऐना अना यौम यज़रिबुका अशकल आखिरीना अला रासिका व यख्तिबु लहयतका मिन दमि रासिक, फरमाया अली मेरी जान अली, ये लफ्ज है अमीरुल हुजूर पाक की तरफ से, कहता अली मेरी जान अली, कहता उस दिन मैं कहाँ हूँगा तुम जानते हो, जिस वक्त जमीन के सबसे बड़े मलऊन तरीन शख्स ने ये जुरात की होगी कि तेरे सख्त सारे अकदस पर तलवार से वार किया होगा और खून तेरे सर से बहते हुए तेरी दाढ़ी को खजाब कर रहा होगा, तो अली मेरी जान जानते हो मैं कहाँ हूंगा, उस दिन मैं नहीं हूंगा कि तेरे सारे अकदस पर पट्टी बांध, इसीलिए मौलाए कायनात उस घड़ी का इंतजार कर रहे होते थे, है कि खासकर 19 की रात की आप जो है अपनी बेटी जनाब उम्मे